प्रेरक उद्बोधन। बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की पहल। जिले के आला अधिकारी और मोटिवेटर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों और पालकों को फेसबुक लाइव द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। अर्पा सामुदायिक रेडियो ऐप और वेबसाइट पर इन प्रेरक संवादों का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर 3 बजे से इन दोनों ही प्रेरक उद्बोधनों का पुनः प्रसारण होगा।
इस कड़ी में आज सुनिए जिला पंचायत बिलासपुर के सीईओ श्री आर एस चौहान का प्रेरक उद्बोधन।
सभी को नमस्कार, जोहार। हम लोगों के लाइफ में हमेशा दिन प्रतिदिन कोई ना कोई एग्जाम, कोई ना कोई चुनौती आते रहता है। जो सफल होते हैं आगे बढ़ते रहते हैं, पर जो असफल होते हैं या कोई परिस्थितियां अपनी अपेक्षा अनुकूल नहीं रहती, उनके लिए भी कोई समय ठहर गया, उनके साथ कोई गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सफलताओं के बारे में हर कोई बात करता है, सफलताओं के लिए सब लोग बधाइयां देते हैं। आप आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे, उन विषयों पे बात करेंगे कि असफलता कोई किसी चीज़ का अंत नहीं है, बल्कि कई विद्वानों ने कहा है और हम भी मानते हैं कि जो असफलता है सफलता की पहली सीढ़ी है, या हम समझ सकते हैं कि जो सफलता का जो मार्ग है उसके लिए असफलता ही एक राजमार्ग की तरह काम करता है। तो असफलता हमारे लिए प्रारंभिक स्तर है, एक बहुत ही अस्थायी स्टेटस है, क्षण है असफलता जिसको हम लोग कहते हैं। और असफलता कुछ नहीं, हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल कोई परिणाम नहीं आना, इसी को हम लोग असफलता मान लेते हैं। किसी भी विषय पे हो, वो चाहे लाइफ में हो, कहीं हम किसी सफर में हो, कोई परीक्षा में हो, कोई भी परीक्षाएं हो सकती है, और हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, ऑफिस में काम करने वाले के लिए उसके सहकर्मी हैं, बॉस हैं, इस तरीके से हम एक जिस परिवेश में रहते हैं, हमारे लिए परिवेश भी हम लोगों के सोचने, हम लोगों के परिणाम या हम लोगों के जो असफलताओं हैं उनको देखते रहता है। पर आज हम कुछ कुछ कहानियाँ और कुछ जो सफल लोग हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारा जो लाइफ है, मनुष्य जीवन है, ये अनमोल है, इससे कीमती एक व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को सबको समझना है। और फिर जीवन के साथ साथ हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा है जीवन में, वो है हमारा स्वास्थ्य। कई बार हम इन दोनों चीज़ों के परे अन्य चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। तो हमारा जीवन और स्वास्थ्य से इस संसार में कोई भी दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। हम कुछ कहानियाँ बताएंगे, हो सकता है ये कहानियाँ आप पहले से सुने हों, जानते हों, फिर भी जो नहीं सुने हैं या सुने हैं उनको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि एक जंगल था। जंगल में आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं। जानवरों के लिए जंगल में बहुत ही स्कूल खुला, और जंगल के राजा ने आदेश दिया कि सभी जानवरों के बच्चों का स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई होगा, और सभी जो जानवर हैं बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। फिर स्कूल खुलने का समय आ गया और बारी बारी से देखे कि सभी जानवरों के बच्चे स्कूल आने लगे। फिर स्कूल आने लगे तो अलग अलग प्रकार के विषयों में पढ़ाई पीरियड्स लगने लगे, और बीच बीच में फिर जब पढ़ाई होंगी तो टेस्ट होने लगे। तो टेस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट हुए स्कूल में। हम देखे उस स्कूल में कि बंदर के बच्चे भी आए हैं, हाथी के बच्चे आए हैं, मछली के बच्चे आए हैं और चीता के बच्चे आए, हिरण के बच्चे आए, इस तरीके से सभी जीवों जानवरों के बच्चे आए हैं। तो जब पहला टेस्ट हुआ पेड़ में चढ़ने का, तो बहुत स्वाभाविक है, आप देखें समझेंगे कि बंदर का जो बच्चा था उस टेस्ट में सबसे अगुआ लाया। हाथी का बच्चा बहुत निराश हुआ कि वो फेल हो गया, 0 अंक मिले। इसी तरीके से अगला टेस्ट आया तैरने का, तो उसमें जो मछली के बच्चे हैं वो टॉप में आ गए, ठीक है, दूसरे जानवरों के बच्चे पीछे रह गए तो वो निराश हो गए। इसी तरीके से आप हर विधा के लिए, कोई अन्य जानवर ज़्यादा आगे निकल गए उनके बच्चे, तो हम समझ सकते हैं इस उदाहरण से, कहानी से, कि हमारे बच्चों में भी, हम इंसानों में भी, सब में अलग अलग काबिलियत है, क्षमताएं हैं, उनको पहचानना है। कई बार हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि हर सब्जेक्ट में वो अच्छे मार्क्स लाएं, या हर में वो अच्छा परफॉर्म करें, कंपटीशन में हो, खेल में हो, तो सब बच्चे यूनिक हैं, हर इंसान यूनिक है, एक दूसरे से कोई तुलना नहीं है। कुछ कोई किसी एक विधा में पारंगत हो सकता है तो कोई दूसरे विधा में ज़्यादा फिट हो सकता है। अगर किसी बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसके लिए केमिस्ट्री के फार्मूला का, कि जल का फार्मूला H2O है, उसको क्या लेना देना है, पीरियोडिक टेबल से उसको क्या लेना देना है। पर हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चा केमिस्ट्री भी पढ़े। उसी तरीके से अगर बच्चे को खेल में रुचि है तो उसको हमारे ब्लड सेल्स में क्या है, RBC और WBC से उसको क्या लेना देना है, पर हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वो भी जाने। तो हर बच्चा अलग चीज़ के लिए बना हुआ है। तो पेरेंट्स से ये निवेदन है, ये सलाह है कि बच्चों से उनके रुचि के अनुसार, उनके काबिलियत के अनुसार चीज़ों पे हम लोग अपेक्षा करें। किसी भी चीज़ में अगर हम एग्ज़ाम की बात लें, प्रारंभिक एग्ज़ाम की बात लें, तो किसी एग्ज़ाम में किस कम स्कोर कर लेना, या किसी वर्ष हमारे जो पैरामीटर हैं जिसके हिसाब से हम कक्षा में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, फेल, पास की जो व्यवस्था रखे हैं, उस व्यवस्था में अगर वो हम लोग उसको पास या उत्तीर्ण नहीं मान रहे हैं, तो ये कोई मंजिल नहीं, कोई स्टेज नहीं, बहुत टेम्परेरी फेज है, अगले साल फिर से पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि नए सिरे से प्लानिंग करें, पढ़ाई करें तो आगे नहीं निकल सकते। बस इन क्षणिक जो फेज है, स्टेटस है, इन चीज़ों को अच्छे से प्लान करने की ज़रूरत है। कभी भी इसके लिए बच्चों की आलोचना ना करें। इसके लिए हम एक और छोटा सा कहानी बताएंगे कि 3 लोग जा रहे थे, पति पत्नी और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, और उनके साथ एक गधा भी था। तीनों चले जा रहे थे, तीनों पैदल चल रहे हैं और साथ में गधा भी चल रहा है, रस्सी से लेके जा रहे हैं। गुजरते गए, एक गांव से गुजरे तो एक लोगों ने देखा और बोला कि कैसे लोग हैं, साथ में गधा है फिर भी तीनों पैदल चले जा रहे हैं, बैठ नहीं सकते, बच्चे को भी पैदल चला रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि बच्चे को बैठा देते हैं। चलते चलते आगे गांव में गए तो फिर लोग मिले, फिर बोले कि कैसे लोग हैं, केवल बच्चे को बैठा दिए हैं और दोनों माता पिता पैदल चल रहे हैं। फिर लगा कि चलो एक और बैठा देते हैं, पत्नी को बैठा दिए। फिर आगे गए तो लोग बोले कैसी पत्नी है, पति पैदल चल रहा है और खुद गधे पे बैठ गई है बच्चे के साथ, पति को भी बैठ जाना चाहिए। फिर आगे गए तो बोले तीनों बैठ गए। फिर लोग देखे तो बोलते हैं कि कितने निर्दयी लोग हैं, तीनों गधे में बैठ गए। गधा बेचारा क्या करेगा। तो इस तरीके से फिर तीनों उतर के फिर पैदल चलने लगे। तो हम जो शुरू में बात कर रहे थे परिवेश का, लोग क्या कहेंगे, हमारे समाज के लोग, हमारे आसपास के लोग क्या आलोचना करेंगे, क्या सोचेंगे, ये इन चीज़ों पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते रहें। दुनिया का सबसे बड़ा जो रोग है वो यही है कि क्या कहेंगे लोग। किसी भी परिस्थिति में जिनको आलोचना करना है वो आपकी आलोचना करते रहेंगे। बच्चे 50% लाएंगे तब भी लोग करेंगे, 70 लाएंगे तब भी। तो अपेक्षाओं का कोई सीमा नहीं है, अपेक्षाएं अनंत है। बच्चों से अपेक्षा, अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपने ड्रीम्स के हिसाब से बच्चों से कोई अपेक्षा ना करें। बच्चे यूनिक हैं, हर इंसान यूनिक है, वो अपने हिसाब से उनके काबिलियत को, उनके अभिरुचि को पहचानें और उनके लिए लक्ष्य तय करने में मदद करें। ये नहीं कि हमारा जो लक्ष्य है, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता था नहीं बन पाया तो मैं बच्चे से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। ये हम अपने ड्रीम्स जो पूरे नहीं रह गए, या हम जो चीज़ को बेटर समझते हैं हमको लगता है कि हमारे बच्चे भी वही करें, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चा यूनिक है, वो अपने हिसाब से अपना जीवन जीने के लिए, अपने हिसाब से पढ़ाई करने के लिए फ्री है। उसमें उसका हमको मदद करना चाहिए, उसके अभिरुचि के हिसाब से काम करने के लिए जिस फील्ड में जाना है उसमें मदद करना चाहिए। और विशेषकर जब स्कूल में रहते हैं तो प्रारंभिक स्तर में ही हम बच्चों को जज कर लेते हैं कि बच्चे होशियार हैं नहीं हैं। कई हमारे जो कहानियां हैं या कहावतें हैं या कही सुनी, वो चीज़ें हमेशा सही नहीं हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि पूत के पांव पालने में, ये हमेशा सही नहीं है। हम देख सकते हैं कि कई जो बड़े बड़े सफल लोग हुए हैं वो स्कूलों में बिल्कुल ही बैक बेंचर रहे हैं, या स्कूलों में बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि वो बुद्धू है, पढ़ने लायक नहीं है। हमारे जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन, उनको तो स्कूल से ये बोला जाता था कि आप स्कूल में पढ़ने लायक नहीं हैं, प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही। उसी तरीके से, पर आप जानते हैं उन्होंने आगे चल के विज्ञान के क्षेत्र में वो सिद्धांत दिया जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसी तरीके से स्कूली दिनों में जिनको कमज़ोर कहा जाता था, शिक्षक जिनको कमज़ोर समझते थे, थॉमस एडिसन अल्वा जिन्होंने बल्ब की खोज की, इनका कहानी सभी लोग जानते हैं या इनके बारे में काफ़ी लोग सुने हैं कि स्कूल में काफ़ी कमज़ोर स्टूडेंट रहे, जब इन्होंने बल्ब की खोज की तो उस समय की भी कहानी है कि बल्ब का जो आविष्कार करने के लिए इन्होंने 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया बल्ब के आविष्कार के। जब उनसे बाद में पूछा गया कि भाई 1000 बार के बाद आपको सफलता मिली आविष्कार करने में, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं 1000 बार ये सीखा कि बल्ब किस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। तो हमको असफलता ये बताती है कि हम किस तरीके से सफलता नहीं मिल पाएगी, और सफलता के लिए नए कौन से तरीके हो सकते हैं उनके लिए ऑप्शन विकल्प आगे खुलते जाता है। हम तो ये मानते हैं कि अगर किसी एग्जाम में, किसी परिस्थिति में आप असफल होते हैं तो असफलता हमारी एक खिड़की बंद करती है, पर उसके साथ साथ हमारे लिए कई खिड़की और दरवाजे भी साथ साथ खुलती हैं। असफलताओं से बिल्कुल घबराने की नहीं है। हम एक कहानी और बताएंगे कि एक बच्चा था, उसने दो पौधे लगाए, एक बांस के एक केक्टस के। बांस और केक्टस के पौधे को बराबर पानी डालते रहे, पर देखे कि केक्टस का पौधा तेजी से बढ़ते जा रहा है। कई लोग बोले कि अब बांस का पौधा नहीं बढ़ पाएगा, पानी डालना छोड़ दो, केवल केक्टस अच्छा है, इस ज़मीन पे नहीं उग पाएगा, बांस को छोड़ दो। पर वो बच्चा दोनों में बराबर पानी डालते रहा, पर एक समय के बाद देखे कि बांस का पौधे केक्टस के पौधे से तेज़ी से बढ़ने लग गया, उससे ज़्यादा ऊंचाई हो गया। तो ये बताता है कि कुछ पौधे कुछ लोगों को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जब ज़्यादा समय लग रहा है तो उस समय वो अपनी जड़ें मजबूत करते रहते हैं, जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो दूसरे से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। स्कूली दिनों में या बच्चों के पढ़ाई के दौरान, वो ग्रेजुएशन में हो किसी में, कुछ मार्क्स को हम लोग उसका पैरामीटर समझ लेते हैं सफलता का, जबकि ऐसा नहीं है। हम अगर रियल लाइफ में भी देखें, समाज में देखें, तो हम किसी वकील के पास अपने केस के लिए जाते हैं तो हम कभी किसी वकील से नहीं पूछते कि उन्होंने जो ला की पढ़ाई की उसमें कितना परसेंट मार्क्स लाया। उसी तरीके से स्कूल के मार्क्स की अगर हम बात करें, हम अपने स्कूल और कॉलेज का खुद का बता सकते हैं कि जब कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ने गए तो अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए थे। कई बच्चे उसमें अपने ज़िले के, कुछ तो स्टेट के टॉपर रहे, पर जब कॉलेज में आए तो वही बच्चे जो टॉपर रहे कॉलेज में आके मीडियोकर हो गए। कुछ बच्चे जो स्कूल में मीडियोकर रहे या लो परफार्मर रहे, वो कॉलेज में आके अच्छा परफॉर्म करने लग गए, टॉप 5 में आने लग गए। तो इसलिए स्कूल के जो मार्क्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो कॉलेज में भी वही रिपीट होंगे, स्कूल कॉलेज अलग है। इसी तरीके से अगर देखें तो आगे स्कूल कॉलेज के मार्क्स के अलावा जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बारी आती है तो स्कूल कॉलेज में अच्छे जो टॉपर रहते हैं, अच्छे स्कोरर रहते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते। तो इनका ऐसा कहीं संबंध नहीं है, बस हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो स्कोर है स्कूल के या कॉलेज के किसी सब्जेक्ट का मार्क है वो उसके सफलता को बताता है। हमारे पास कुछ सवाल भी आए हैं, उन सवालों को भी हम देखेंगे। और किसी परिस्थिति पे हम लोग सीधा सीधा किसी कंक्लूजन में पहुँच जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर परिस्थिति में हमको कई पहलू देखने को मिल सकता है, हर घटना में पॉजिटिव नेगेटिव देखने सोचने को मिल सकता है, अपनी नज़रिया है। जैसे हम सब कई बार सुन चुके होंगे कि अगर एक गिलास है, गिलास में अगर उसमें 400 ml पानी आ सकता है और गिलास में अगर 200 ml पानी भरा हुआ है तो कोई बोलेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है, जबकि कोई दूसरा बोलेगा कि गिलास आधा खाली है। तो हम लोगों का देखने का नज़रिया है, दूसरा परिस्थितियां हैं कि जैसे अगर हम 9 लिखें तो एक तरफ से देखेगा उसको दिखेगा 9 लिखा है, पर सेम चीज़ को कोई दूसरे तरफ से देखेगा तो आपको 6 लिखा हुआ दिखेगा। तो देखने का नज़रिया है, तो हम अपने देखने के नज़रिया को पॉजिटिव रखेंगे। कई बार असफलता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हो सकता है उसके आगे कुछ अच्छा प्रायोजन हो, ये भी रहता है। जैसे हम एक घटना बता रहे हैं कि किसी काम से चले जा रहे थे, समय के लिए थोड़ा विलम्ब भी हो रहा था जहाँ पहुँचना था, पर चलते चलते देखे कि बीच में हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और पर ये संयोग था कि कुछ ही दूर में पंचर वाला भी था, स्टेपनी भी चेंज करा लिए, पंचर भी बन गया और बैठ भी गए। पर मन में तनाव था कि भाई गाड़ी आज ही पंचर होना था, यही होना था, मन में गुस्सा भी आया ड्राइवर पे भी, पर आगे जाके देखे तो कुछ दूर बाद पता चला, 5-6 किलोमीटर बाद एक गांव पहुंचे, तो वहां से जो रास्ता गुजरता है वहां गांव वालों ने रोड चक्का जाम किया हुआ था। जैसे ही हम पहुंचे उसी टाइम चक्का जाम खुल रहा था, चक्का जाम सुबह से लगा हुआ था। तो वहाँ पहुँच भी जाते तब भी चक्का जाम में फंस जाते, बात वही थी। तो ये समझना है कि कोई चीज़ हुई है या कोई रिजल्ट अपेक्षित नहीं आया है या कोई ऐसा कोई घटना हो गई, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हो सकता है कोई बड़ा मुसीबत हो, कुछ हो, उससे बचने का भी उपाय है। हमको ये सोचना चाहिए, समझना है कि हमेशा जो हो रहा है अच्छा है। उन परिस्थितियों में अगर अपेक्षित रिजल्ट नहीं है तो फिर से प्लान करके आगे बढ़ते रहना है। कुछ सवाल ले सकते हैं हम लोग। वर्तमान में बोर्ड परीक्षा में असफलता से बच्चों में हताशा बढ़ रही है और बच्चे आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रहे हैं, इसके लिए बच्चों और पालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सबसे शुरू में ही जैसे हम बताए कि हमारा जीवन अनमोल है, किसी रिजल्ट से कोई जान दे दे, कोई घातक कदम उठा ले, मेरे को तो आज तक ये चीज़ें नहीं लगता कि जीवन में कोई और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ होगा जिसके लिए कोई जीवन दे दे। एक सामान्य रिजल्ट के लिए किसी भी कक्षा का हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। दूसरा, पालकों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिनके बच्चे उनके अपेक्षा के अनुरूप मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो उनके साथ वैसे ही व्यवहार करें, वैसे ही उनके साथ बातचीत रखें जैसे बच्चे ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया हो। कोई उनके बातचीत में डिफरेंशिएशन नहीं दिखना चाहिए, ना ही बार बार उसको सांत्वना देने का प्रयास करना चाहिए। बस अपने व्यवहार को सामान्य बनाए रखें और बीच बताएं कि कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है। और बताएं, कई बार रहता है कि हमारे घरों में भी या अधिकतर घरों में भी, अपना उदाहरण बताएं कि भाई आप तो इतना मार्क्स लाए हैं, हम तो इससे कम मार्क्स लाए थे, आप तो 70% लाए हैं, हम तो अब जब पढ़ाई किए तो हम तो 50% ही लाए थे, तो हमारे घर में तो आप बेहतर हो, आप जिन परिस्थितियों में पढ़ाई किए बेहतर हैं। तो इस तरीके से बच्चों का तनाव, हम जितना माता पिता बच्चों का तनाव दूर कर सकते हैं उससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो माता पिता के एक पॉजिटिव शब्द दुनिया के लाखों शब्द पे भारी रहते हैं। तो माता पिता बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से सब पेश आते हैं, पर इन परिस्थितियों पे भी रिजल्ट पे अपनी ना उनको अपेक्षा बताएं, विशेषकर जब रिजल्ट आने वाला हो, और जब आ जाए तब भी सफलताओं को सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, पर असफलताओं के लिए कोई इतना निराश होने की बात नहीं है। एक दो लाइन हम बताएंगे कि सिंपल, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, तू इंसान है, अवतार नहीं, गिर उठ फिर से दौड़, गिर उठ फिर से दौड़, क्योंकि तू हारेगा, क्योंकि तू हारेगा हर बार, ये नहीं, क्योंकि तू हर बार हारेगा नहीं। तो इंसान है, असफलता और स्ट्रांग करते रहती है। असफलता अगर कोई है तो हम नए सिरे से, नए प्लानिंग से फिर से आगे बढ़ें। और किसी भी सब्जेक्ट में कोई कमज़ोर है, कुछ है, इस तरीके से बातें करते हैं, वो कुछ नहीं है। जब हम किसी भी सब्जेक्ट पे फोकस करें, अच्छे से बराबर उसमें पढ़ाई करें, बार बार उसमें दोहराएं, तो वही सब्जेक्ट कुछ दिनों में आसान लगने लगता है। तो जिसमें कोई अगर कमी रह गई है तो बस यही है कि उस सब्जेक्ट को बार बार, उस कुछ क्वेश्चन विशेष रहते हैं, टॉपिक दिया रहता है, प्रश्नावली है, उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, प्रैक्टिस की कमी को दोबारा ठीक करते हुए आगे बढ़ते रहें। प्रैक्टिस पढ़ाएंगे तो परफेक्शन अपने आप आते रहेगा। सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम डटे रहें, अपने लक्ष्य पे लगे रहें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है लाइफ में जिसको हम लोग अगर लगातार प्रयास करते रहें तो प्राप्त ना कर सकें। लाइफ में बहुत अच्छे मार्क्स और स्कोर करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों में हम नैतिकता लाएं, उनको अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इंसान एक सफल इंसान से ज़्यादा बेहतर है। तो बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करें, सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए। अच्छे इंसान हैं तो सफलता भी मिलते रहेगी। सफलता को लाइफ का एक पैरामीटर ना माने, समाज में अच्छे इंसान रहेंगे तो सफलता कभी ना कभी मिलते रहेगी। स्कूल के मार्क्स बहुत शुरुआती दिनों के मार्क्स हैं, इन मार्क्स के पीछे किसी को ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो बहुत अच्छा है, पर अच्छे मार्क्स भी आने वाले समय के अच्छे भविष्य की हमेशा गारंटी नहीं है। पर अच्छे मार्क्स लाते रहें, पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं तो मार्क्स आ जाए, ये हमारा स्कोर करने का या हमारे शैक्षणिक व्यवस्था का एक पार्ट है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी इस तरीके से जो एग्ज़ाम है उसमें अभी नहीं मिलता सफलता, 6 महीने बाद मिलेगा, 6 महीना तो साल भर। और कई बार ये रहता है पेरेंट्स का या सब बाकी बच्चों का सोच कि हमारा साल खराब हो जा रहा है। कोई साल ऐसा खराब नहीं होने वाला है। आपका कोई साथी एक साल पहले अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया, अपना पढ़ाई पूरा कर लिया, तो ज़रूरी नहीं कि अपने लाइफ में आपसे आगे निकल गया। हो सकता है पढ़ाई करने के बाद अपना जो करियर है, नौकरी है, बिजनेस है या जो भी वो करना चाहते हैं उसमें आपसे आगे ना निकले, आप उससे आगे उस फील्ड में निकल जाएं। तो बहुत सारे और भी हमारे सफल लोग रहे हैं जिनका स्कूली एजुकेशन उतना अच्छा नहीं रहा। सब हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, MS धोनी को जानते हैं जिनका स्कूलिंग अच्छा नहीं रहा, बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट रहे जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और एक समय में दुनिया के रिचेस्ट पर्सन रहे हैं। उसी तरीके से मार्क जुगरबर्ग हैं। देखें तो जिनके एकेडमिक या स्कूली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं रहा है, वो भी अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुए हैं। तो कहीं भी स्कूल के मार्क्स को सफलता का कोई मापदंड ना समझें, आगे बढ़ते रहें और परिश्रम करते रहेंगे तो स्कूल के कॉलेज के एग्ज़ाम इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर पास होते रहेंगे। एग्ज़ाम पास करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि 2023 में ही 2024 में ही पास करना है। जो नहीं कर पाए उनके लिए 2025 में वही अवसर है, हो सकता है उससे बेहतर अवसर हो। ठीक है, जैसे एक है कि सोशल मीडिया और मोबाइल से कारण बच्चे आत्ममुक्त हो रहे हैं, उन्हें बहिर्मुख बनाने के लिए बच्चों का शेड्यूल अलग अलग खेल कूद या उनके अभिरुचि के अनुसार उनको परिवेश दें। जैसा कि हम सब जानते हैं अगर बच्चों को उनके दोस्त मिल जाएं, खेलने कूदने को मिल जाए, उस समय बिल्कुल मोबाइल नहीं देखते। तो इस तरीके से परिवेश रहे कि बच्चे इंगेज रहें अपनी अभिरुचि के अनुसार। जब उनके पास कोई काम नहीं रहता, बोर होने लगते हैं बच्चे, तब मोबाइल की तरफ जाते हैं। तो उनके अभिरुचि लायक परिस्थिति दें, खेल कूद हो सकता है, संगीत हो सकता है, अन्य कोई एक्टिविटी में हम समय दें, हम जुड़े रहें, तो ज़रूर बच्चे मोबाइल का कम उपयोग करेंगे। और साथ में हम भी जब घर में बैठते हैं देखते हैं पेरेंट्स भी मोबाइल लेके बैठे हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि बच्चे भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी मोबाइल का उपयोग कम से कम बच्चों के सामने करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो हम ही से सीखते हैं। तो बच्चे जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसके लिए पेरेंट्स भी हम भी जिम्मेदार रहते हैं। तो हम लोग भी पेरेंट्स भी कम से कम मोबाइल का घर में उपयोग करेंगे तो बच्चे अपने आप मोबाइल का उपयोग कम करेंगे। और मेरे को लगता है कि समय भी हम लोगों का पूरा हो गया है, तो आप सब से चर्चा करने का अवसर मिला। भविष्य में भी इस तरीके से विभिन्न विषयों में जिले के हमारे मुख्य आदरणीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में ऐसा प्रयास हम लोग करते रहेंगे। और फिर सबसे यही अपील है कि केवल परीक्षा के मार्क्स को किसी सफलता का पैमाना ना समझें, अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, सफलता अपने आप मिलते रहेगी। थैंक यू।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।